हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवद्गीता सार कार्यक्रम में। और आज हम भगवद्गीता का 9वां अध्याय और 9th चैप्टर, जिसका शीर्षक है परम गुह्यतम ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम गुह्यम ज्ञान के बारे में बताते हैं। वो परम गुह्यम ज्ञान क्या है, तो आइए हम भगवद्गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक से चर्चा करते हुए इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट 1। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञानत्वमोक्षसे शुभात्। तो अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं आपको एक बहुत गुह्यतमं ज्ञान बताने वाला हूँ। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, कहते हैं एक गुह्य ज्ञान है, एक गुह्यतर ज्ञान है और तीसरा गुह्यतमम ज्ञान है। तो गुह्य कॉन्फिडेंशियल ज्ञान क्या है? देहिनुस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा नमोयति। मतलब हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो वो गुह्य ज्ञान है। तो गुह्यतर लेवल 2 वो ज्ञान क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावां भजते यो मां सामे युक्ततमो मतः। मतलब क्या है? भगवान का भजन करना, श्रद्धा से भजन करना। एक जीव जब भगवान की भक्ति करता है तो उसको गुह्यतर ज्ञान कहा गया है। तो प्रश्न बनता है गुह्यतमम ज्ञान क्या है, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण इस 9वें अध्याय में करने वाले हैं। क्या है वो गुह्यतम ज्ञान? वो ज्ञान है कृष्ण और उनके भक्त के बीच में आदान प्रदान, वो प्रेममय संबंध का विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण इस 9वें अध्याय में करेंगे। इस 9वें अध्याय को इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भगवद्गीता का अध्याय माना गया है। यहाँ पे आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? इस गुह्यतमम ज्ञान को प्राप्त करने की कोई क्वालिफिकेशन या प्रीरिक्विजिट? सो कृष्ण कहते हैं अनसूयवे, वो व्यक्ति जो मुझसे द्वेष नहीं करता। अर्जुन तुम मेरे द्वेषी नहीं, तुम मेरे सखे और भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ। तो प्रश्न बनता है प्रभु ये ज्ञान प्राप्त करके मुझे क्या होगा? तो कृष्ण पहले श्लोक की आखिरी लाइन में कहते हैं मोक्ष से अशुभात। अर्जुन व्यक्ति के जीवन में सिर्फ शुभ और शुभ ही होगा और मोक्ष की उसको प्राप्ति होगी। और फिर दूसरे श्लोक में भगवान बात करते हैं इस ज्ञान की महिमा की। और कृष्ण कहते हैं दूसरा श्लोक राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। अर्जुन मैं जो तुम्हें ज्ञान बताने वाला हूँ वो राजविद्या है, इज अ किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राजगुह्यम सबसे गुह्यतम ज्ञान है, पवित्रम सबसे शुद्ध, इदम उत्तमम उससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कोई नहीं है। प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम, इस ज्ञान को जो प्राप्त करता है उसको आत्म साक्षात्कार होगा। और अंत में सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसको सुसुखम उसके मन में सुख और शांति आएगी। कर्तुम अव्ययम, और ये ज्ञान से प्राप्त होने वाला सुख और शांति कभी भी उसका विनाश नहीं होता। अर्जुन जब भगवान की इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बट उनके मन में एक प्रश्न उठता है, प्रभु अगर ये ज्ञान, ये भक्ति योग का ज्ञान इतना सर्वश्रेष्ठ है तो क्यों हर कोई जीव इसको नहीं अपनाता? क्योंकि हर कोई जीव सुख शांति का जीवन चाहता है, हर जीव इस भौतिक दुनिया में सुख की खोज में लगा है, तो क्यों इस ज्ञान को नहीं अपनाता? उसके लिए भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं अर्जुन क्यों नहीं करता, उसका क्या लक्षण है, वो कौन व्यक्ति है जो नहीं अपनाता। कृष्ण कहते हैं आशद्धा न पुरुषा धर्मस्यास परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। अर्जुन, जो भक्ति श्रद्धा नहीं रखते भगवान पर या वैदिक शास्त्रों पर, वो व्यक्ति कभी भी इस भक्ति योग के नियमों का या भक्ति योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो अर्जुन पूछते हैं, प्रभु उनकी गति क्या है? भगवान कहते हैं, मृत्यु संसार वर्तमानी। ये तीसरे श्लोक का आखिरी लाइन है जहाँ भगवान बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो मेरे में श्रद्धा नहीं रखता, शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखता, मृत्यु संसार वर्तमानी, उसको दोबारा इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार इस भौतिक दुनिया में बार बार इसको पुनर्जन्म की साइकिल में भटकना पड़ता है। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आओ, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ मेरे ऐश्वर्य के बारे में। क्योंकि अगर आपको मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, श्रद्धा प्राप्त करनी है, तो ज्ञान से आता है। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में और कुछ ज्ञान बताऊंगा, मेरा ऐश्वर्य का ज्ञान बताऊंगा। अगर देखा जाए तो सातवें अध्याय में भी भगवान ने क्या कहा था, तत्श्रणु, अर्जुन अगर आपको मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो आप मुझसे सुनिए। आठवें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिए, इसलिए भगवान इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए। आठवें अध्याय के प्रश्नों का जवाब देने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर अपने ऐश्वर्य ज्ञान का उल्लेख या वर्णन करने लगते हैं। और इस अध्याय में श्लोक संख्या 4 से लेकर श्लोक संख्या 10 तक भगवान बताते हैं कि कैसे, हे अर्जुन, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति मेरी ही शक्ति है, मेरे ही द्वारा इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि को मेंटेन किया जाता है, मेरे ही द्वारा इस सृष्टि का विनाश होता है। इस भौतिक दुनिया में जो कुछ होता है वो मेरी इच्छा के अनुसार ही होता है, या मेरी इच्छा के अनुसार इस भौतिक दुनिया का निर्माण हुआ है। सब जीव हर समय मेरे पर निर्भर हैं, मैं हर जीव के अंदर हूँ, पर हर कोई जीव मेरे अंदर नहीं, हर समय मैं भौतिक प्रकृति के अंदर हूँ, पर भौतिक प्रकृति मेरे अंदर नहीं। इस प्रकार से भगवान उस ज्ञान का वर्णन करते हैं जिसको कहा जाता है इनकंसीवेबल रिलेशनशिप। मतलब भगवान का प्रकृति और जीव के संग जो संबंध है वो साधारण व्यक्ति के समझ के परे है। पर अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन कुछ समझो ना समझो, एक बात तो जरूर समझ लीजिए, जो 10वें श्लोक में भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये 10वां श्लोक है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते साचराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत विप्ररी वर्तते। अर्जुन, आई एम द सुप्रीम डायरेक्टर, मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये जो भौतिक शक्ति, ये जो प्रकृति है वो मेरे अध्यक्ष में है, मुझसे इंडिपेंडेंट नहीं है। सुयते सा चरा चरम, इसी प्रकार सब जीव मेरे अध्यक्ष, मेरे ही कंट्रोल में आते हैं। इस प्रकार भगवान बताते हैं, अर्जुन आई एम द सुप्रीम डायरेक्टर, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, आई एम द सुप्रीम प्रोपराइटर। और कृष्ण बताते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ये क्यों ऐश्वर्य ज्ञान का उल्लेख कर रहा हूँ, उसका कारण यही है, सिर्फ एक, ताकि आपका मेरे प्रति श्रद्धा सही मायने में हो सके, या श्रद्धा यू नो एक प्रकार से दृढ़ हो सके। इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए मैं आपको अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु अगर ऐसा है, अगर आप ही सुप्रीम डायरेक्टर हैं, जैसे आपने कहा माया अध्यक्षेन प्रकृति, माया भी आप ही की शक्ति और आपके नियंत्रण में है, तो क्यों और किस कारणवश लोग आपकी शरण में नहीं आते? इतना आनंदमय ज्ञान जो आप भगवद्गीता में दे रहे हैं, लोग उसको क्यों नहीं अपनाते? किस कारणवश लोग अनेक देवताओं या साधु महात्माओं की शरण लेते हैं पर आपकी शरण नहीं लेते, उसका कारण क्या है? तो भगवान श्लोक संख्या 11 से लेकर श्लोक संख्या 25 तक इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। भगवान बताते हैं, अर्जुन तीन प्रकार की प्रमुख मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, या गलतफहमी है जब भी भगवान का विषय आता है। सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग समझते हैं भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, तो भगवान भगवान नहीं, मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य, जैसे दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध इत्यादि कभी कृष्ण को भगवान के रूप में ही देख पाए, उन्होंने हमको हमेशा एक साधारण मनुष्य के रूप में माना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं भगवान मनुष्य के रूप में आए, मतलब क्या है भगवान मनुष्य के रूप में आए? इस प्रकार की गलत फहमी रहती है। तो पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग कृष्ण समझाते हैं अर्जुन, लोग सोचते हैं मैं और अन्य देवता उनके अंदर कोई अंतर नहीं है, तो लोग सोचते हैं हम किसी की भी पूजा पाठ करेंगे हमें फल तो वैसा ही मिलेगा। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। और तीसरी गलतफहमी जो लोगों को होती है, वो कहते हैं प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, कर्म सर्वश्रेष्ठ है, भगवान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार की गलतफहमी को दूर करते हैं भगवान इस 11वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक, जहाँ भगवान बताते हैं अर्जुन ये सही नहीं है। मेरा स्वरूप है, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, विराट रूप मेरा स्रोत्र नहीं है, विराट रूप मेरे से आया है, अन्य सभी प्रकार के देवी देवता मेरे ही अंश हैं, इत्यादि प्रश्नों का जवाब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक संख्या में देते हैं। तो आइए इसका वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 11, किस प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, भगवान कहते हैं अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषुंतान माशिता, वो मुझे एक साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। इस प्रकार के जो मूढ़ अज्ञानी होते हैं वो गलत फहमी ही में रहते हैं, सोचते हैं मैं परमेश्वर नहीं उनके जैसा एक साधारण मनुष्य हूँ। तो अर्जुन सोचते हैं प्रभु ऐसे लोगों की गति क्या होती है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं 12वें श्लोक में, अर्जुन जो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, कृष्ण कहते हैं मोघाश मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत सहा राक्षसम आसुरम चैवा प्रकृति मोहिनम श्रुता। अर्जुन जो ऐसे लोग होते हैं अवजानंती माम मूढ़ा, जो मूर्ख प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो मुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं समझते हैं, वो मेरी प्रकृति मेरी माया शक्ति की शरण लेकर उनका पतन हो जाता है। और दो चीज़ कहते हैं भगवान, राक्षसम आसुरिम चैवा, वो राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, उस प्रकार व्यक्ति मेरी भक्ति और मेरे शरण से और दूर हो जाता है। उदाहरण के रूप में जरासंध, जो भगवान शिव का भक्त था, जरासंध जो ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, वो जरासंध जो कंस का पिता था, फादर इन लॉ एक प्रकार से, ससुर कहते हैं ससुर था, वो जरासंध जब शिशुपाल की जब रुक्मणी से विवाह होनी थी और कृष्ण रुक्मणी को अपहरण कर लेते हैं, तो शिशुपाल बहुत दुखी हो जाते हैं। और तब जरासंध शिशुपाल को समझाते हैं, हे शिशुपाल, ये जो जीवन है कर्म के अनुसार चलता है, ये जो प्रकृति है भगवान के नियंत्रण में है, भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता, और अंत में तो व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है, इसलिए दुखी मत होइए। वो जरासंध शिशुपाल को भगवद्गीता के नियमों को समझा रहा है, पर उसको खुद ही नहीं पता भगवान कौन है। वही जरासंध 18 बार कृष्ण या मथुरा पे हमला करता है, अंत में भगवान श्री कृष्ण भीम के द्वारा जरासंध की हत्या करवाते हैं युद्ध में। हिरण्यकाश्यपु ब्राह्मण पुत्र बहुत ज्ञानी था, उसका भाई हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हो जाती है तो हिरण्यकाश्यपु अपनी माँ और हिरण्याक्ष की पत्नी को कहता है हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, ये जो भौतिक प्रकृति है नश्वर है, रोने की जरूरत नहीं है, सब भगवान के नियंत्रण में होता है। जानते हुए भी भगवान से ही द्वेष करता था। उस प्रकार के लोगों का उल्लेख यहाँ पे हुआ है, जो जानते भी हैं जानते हुए भी भगवान को नकारते हैं, जो अनजाने उनका तो कहना ही क्या। तो जो भगवान को नहीं अपनाता वो राक्षसिम और आसुरिम प्रवृत्ति का होता है, उस प्रकार भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, प्रभु वो कौन है जो आपको अपनाते हैं, वो कौन है, उनको आप क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं अर्जुन वो महात्मा कहलाते हैं। 13वां श्लोक, महात्मानस तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजंती अनन्या मनसो ज्ञात्मा भूतादिम अव्ययम्। अर्जुन ये मेरे इंटरनल एनर्जी अंतरंग शक्ति के शरण में रहते हैं, इनको मैं महात्मा कहता हूँ क्योंकि ये मेरे तत्व या तथ्य को जानते हैं। तो दो चीज़ बताते हैं भगवान श्री कृष्ण इन महात्माओं के बारे में, दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, वो मेरी जो अंतरंग शक्ति हैं उनके शरण में हमेशा रहते हैं, दूसरा मेरे अलावा ये किसी की भी शरण नहीं लेते। तो अर्जुन सोचते हैं प्रभु अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्तियों को मैं कैसे पहचान सकता हूँ, अगर मैं सड़क पर जा रहा हूँ और कोई शुद्ध भक्त मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आता है तो ऐसे क्या लक्षण है जो मैं पहचान पाऊँ वो शुद्ध भक्त है। तो भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में, सततम కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చాద్రవ్రతః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. కృష్ణ బతాతే హై సతతం కీర్తయంతో మాం, సదా మేరే హరి నామ కా జప కర్తే హై. సతతం హమేషా కీర్తన మేరే నామ జప కా కీర్తన కర్తే హై. యతంతశ్చ దృఢవతః, జో భక్తి కే మార్గ కే నియమ హై ఉన్కో బడీ దృఢతా సే పాలన కర్తే హై. నమస్యంతస్, ఓ మేరీ పూజా ఆరాధనా ముజే నమస్కార్ కర్తే హై. నిత్యయుక్తా ఉపాసతే, అంత మే కృష్ణ కహతే హై వో హమేషా మేరీ సేవా మే లగే రహతే హై. ఇస్ ప్రకార భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ మహాత్మాఓ కా వర్ణన కర్తే హై. ఔర్ అబ్ ఆగే 16th శ్లోక సే లేకర్ 25th శ్లోక తక్ భగవాన్ బాత్ కర్తే హై తీన్ ప్రకార కే లోగో కీ, యా తీన్ ప్రకార కీ పూజా కీ. తో భగవాన్ కహతే హై ఏక్ ప్రకార కే లోగ్ హోతే హై జో ఏకత్వేనా మే విశ్వాస్ కర్తే హై, దూసరే పృథక్ తేనా మే విశ్వాస్ కర్తే హై, ఔర్ తీసరే విశ్వాస్ కర్తే హై విశ్వతో ముఖం. క్యా మత్లబ్ హై? కుచ్ లోగ్ హోతే హై జిన్కీ శ్రద్ధా హోతీ హై ఐసీ, వో సోచ్తే హై ఆప్ భీ భగవాన్ మే భీ భగవాన్ సబ్ భగవాన్. దూసరే కేటగరీ కే లోగ్ హోతే హై జో సోచ్తే హై సభీ దేవీ దేవతా ఏక్ సమాన్ హై, సభీ భగవాన్ హై. జీవ్ ఓ దేవతా మే అంతర్ హై పర్ సభీ దేవతా ఓ కృష్ణ ఏక్ సమాన్ హై. ఔర్ తీసరే కేటగరీ కే లోగ్ హోతే హై జో విశ్వతో ముఖం, జో భగవాన్ కా విరాట్ రూప్ హై, జిస్కా ఉల్లేఖ బస్ అబ్ అగ్లే దో చాప్టర్ మే ఆనే వాలా హై. విశ్వతో ముఖం ఉస్కో సర్వశ్రేష్ఠ మాన్తే హై. తో ఇస్ బారే మే భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ అబ్ 16వే శ్లోక్ సే లేకర్ 25వే శ్లోక్ తక్ వర్ణన కర్తే హై, ఔర్ ఉసీ కే బారే మే హమ్ సారాంశ మే యహాన్ వర్ణన కరెంగే. భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ అబ్ అర్జున్ కో ఇస్ ఏకత్వేనా పృథక్త్వేనా ఔర్ విశ్వతో ముఖం విషయ కే ఉపర్ ఆగే చర్చా కర్తే హై 16వే శ్లోక్ సే లేకర్ 25వే శ్లోక్ తక్. హమ్ ఇస్ సెక్షన్ కో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ కే రూప్ మే చర్చా కరెంగే. విశ్వ రూప్ క్యా హై ఉస్కే బారే మే తో వర్ణన హమ్ ఆగే కరెంగే, తో అభీ ఉస్కో హమ్ యహాన్ కవర్ నహీ కరెంగే. బట్ దేవతాఓ ఔర్ కృష్ణ కే బీచ్ మే క్యా సంబంధ హై ఉస్కా వర్ణన కర్తే హై. సబ్సే పహలే కృష్ణ ఔర్ దేవతా కా రిలేషన్షిప్ యా సంబంధ క్యా హై, జైసే హమ్నే పహలే బతాయా భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ బతాతే హై జో దేవతాయే హై ఔర్ జో జీవాత్మా హై వో సిర్ఫ్ ఏక్ హీ తత్వ కే బనే హై, ఉన్మే కోయి అంతర్ నహీ హై. ఉదాహరణ కే రూప్ మే సమ్ఝానే కే లియే కి దేవతాఓ మే ఔర్ జీవ తత్వ మే క్యా అంతర్ హై ఔర్ భగవాన్ ఔర్ దేవతాఓ మే క్యా సంబంధ హై, సమ్ఝానే కే లియే ఏక్ ఉదాహరణ దేతే హై. సోచియే కోయి కంపనీ హై, ఉస్ కంపనీ కే కోయి సీఈఓ హై. అబ్ వో సీఈఓ తో హర్ ఏక్ వ్యక్తి కో హైర్ నహీ కర్తా, నా హీ ఉస్కో సాలరీ దేతా హై, నా హీ హర్ ఏక్ ఎంప్లాయీ కో టాస్క్ అసైన్ కర్తా హై. ఇన్ సబ్ అలగ్ అలగ్ రోల్స్ కే లియే ఉన్హోనే HR హెడ్, ఫైనాన్స్ హెడ్, టెక్నికల్ హెడ్, అలగ్ అలగ్ ప్రకార కే లోగో కో అపాయింట్ కరా హై. జో HR హెడ్ హోతా హై హీ హ్యాజ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సాథ్ హీ సాథ్ ఉస్కే పాస్ మోర్ పవర్స్, హీ హ్యాజ్ మోర్ ప్రివిలేజెస్ ఔర్ షీ హ్యాజ్ మోర్ ప్రివిలేజ్ ఉస్ కామ్ కో కర్నే కే లియే. ఉసీ ప్రకార ఇస్ భౌతిక దునియా కా నియంత్రణ ఔర్ భౌతిక దునియా కో మెయింటైన్ కర్నే కే లియే భగవాన్ నే అలగ్ అలగ్ ఉపాధియాం బనాయి హై, జైసే కి హోమ్ మినిస్టర్, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఇత్యాది, జిన్ జగహో పర్ అలగ్ అలగ్ ప్రకార కే దేవతాఓ కో బిఠాయా హువా హై. జైసే ఇంద్ర, ఇంద్ర దేవ కా నామ నహీ హై, ఇంద్ర పొజిషన్ కా నామ హై. జైసే సూర్య దేవత, సూర్య దేవత దేవత కా నామ నహీ హై, దేవత కా నామ తో వివస్వాన్ హై, సూర్య పొజిషన్ కా నామ హై, జైసే ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్, హోమ్ మినిస్టర్ ఎట్సెట్రా. ఇస్ ప్రకార యే సభీ దేవీ దేవతా జో శాస్త్ర మే హమారా ఉల్లేఖ కరా హువా హై వో అప్నే పిచ్లే జనమ్ మే బహుత్ బహుత్ పుణ్య ఆత్మా థీ, జిన్కో భగవాన్ నే సెలెక్ట్ కర్కర్ ఇస్ ప్రకార ఇస్ దేవతా కీ ఉపాధి దీ హై. జైసే ఇంద్ర కే బారే మే అగర్ సారాంశ మే వర్ణన్ కియా జాయ్, మహాభారత్ మే విస్తార్ సే ఇంద్ర కే బారే మే చర్చా హోతీ హై. ఇంద్ర దేవతాఓ మే సర్వశ్రేష్ఠ, ఇస్లే ఉన్కో ఇంద్ర కహా జాతా హై. ఇంద్ర కా మత్లబ్ క్యా హై? జో సభీ దేవతాఓ మే సర్వశ్రేష్ఠ హో. తో జో పాండవో కౌరవో కే ఏక్ వంశజ, జో ఎన్సెస్టర్ థే బహుత్ బహుత్ పహలే, ఏక్ సమయ మే సూర్య దేవత, వాయు దేవత, వరుణ దేవత పాండవో యా కౌరవో యా కహియే హస్తినాపుర కీ సభా మే ఆకర్ ఉన్సే ప్రార్థనా కర్తే హై కి ఇంద్ర, జో ఇంద్ర కీ స్థితి యా పొజిషన్ పే బైఠే థే ఆజ్ నహీ హై, ఆప్ కృపా కర్కే ఇంద్ర కీ స్థితి యా పొజిషన్ కో అప్నాయే ఔర్ హమ్ సబ్కా మార్గదర్శన్ సంరక్షణ కరియే రాక్షసో సే. తో జో యే కౌరవో ఔర్ పాండవో కే ఎన్సెస్టర్ థే తో వో జాకర్ కుచ్ సమయ కే లియే ఇంద్ర కీ పొజిషన్ పే బైఠతే హై. తో మత్లబ్ క్యా హై? యే పొజిషన్ హై, నామ నహీ హై. तो जो पुण्य आत्मा होती है, तो क्यों वो धरती पर आए थे, पृथ्वीलोक पर आए थे? क्योंकि जो राजा था, जो पर्टिकुलर राजा था, बहुत पुण्य आत्मा था। इसने कई कई अश्वमेध यज्ञ करे थे, जिसके अनुसार वैसे भी उसको अगले जन्म में इंद्र की उपाधि मिलनी थी, पर इस जन्म में ही ऐसी स्थिति बनी कि इंद्र जो वहाँ उस समय थे, वो कारणवश उस स्थिति को या उस पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाए। इसलिए जो बाकी देवता थे वो आकर इस प्रकार कौरवों के जो एंसेस्टर हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी कई कई कहानियाँ आती हैं शास्त्र में। तो पहली चीज़ ये, कभी आपने सुना है कि कोई और कृष्ण की उपाधि पा चुका हो? कृष्ण किसी उपाधि का नाम नहीं है, विष्णु किसी उपाधि का नाम नहीं है, ये नाम है। कृष्ण शब्द का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, राम का मतलब होता है जो सबको सुख या प्लेजर देता है, द वन हु गिव्स प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट। उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों में अंतर समझ आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न बनता है, भगवान कृष्ण और जो अन्य देवता हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? जो व्यक्ति कृष्ण की आराधना करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण उनको ब्लेसिंग्स या वरदान देते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। जो अन्य देवताओं का पूजा पाठ करके उनसे ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, वो नश्वर होती हैं, समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब इस सृष्टि का सर्वनाश होता है तो साथ ही साथ सब देवता, उनके वरदान, सभी का सर्वनाश होता है। तीसरा, क्या अन्य देवता मोक्ष का वरदान दे सकते हैं? नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे अमर बनाइए, तो ब्रह्मा कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे कैसे अमर बनाऊँगा। उसी प्रकार कई बार शिव के भक्तों ने शिव से प्रार्थना करी और शिव भी यही कहते हैं। तो जो मोक्ष है, मोक्ष का वरदान केवल विष्णु या कृष्ण दे सकते हैं, कोई और अन्य देवता नहीं दे सकते। तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है, अगर हम विष्णु या कृष्ण की आराधना करेंगे और देवताओं की आराधना छोड़ेंगे, कहीं अन्य देवता हमसे क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत मान्यता है। महाभारत के अंदर बहुत खूबसूरत उदाहरण आता है, जहाँ व्यासदेव के कहने पर जब सभी पांडव वन में थे, वनवास में थे, 13 साल के वन में, 5वें साल या 4थे साल की बात है, जब व्यासदेव आकर युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि अब समय आ गया है अर्जुन को इंद्रलोक भेजने का और सभी दिव्य अस्त्र को कलेक्ट करने के लिए। तो जब अर्जुन इंद्रलोक की तरफ जा रहे होते, तो बीच रास्ते पर एक शिकारी उनके सामने आता है, युद्ध के लिए न्योता देता है, और बाद में अर्जुन को पता चलता है वो शिकारी कोई और नहीं, भगवान शिव हैं। भगवान शिव अर्जुन से युद्ध करके इतने प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव अपना पशुपति अस्त्र अर्जुन को दे देते हैं। उस समय समस्त देवी देवता वहाँ उपस्थित होकर अर्जुन को अपने सारे के सारे दिव्य अस्त्र देते हैं। मतलब क्या है? अर्जुन कृष्ण के सखे, कृष्ण के भक्त, और देखिए कैसे अर्जुन सबको प्रसन्न कर पाए। कोई ऐसा आपने उदाहरण सुना है जो किसी अन्य देवता का भक्त हो और उससे विष्णु भी प्रसन्न हुए हो? हाँ या ना? ज़्यादातर जो हमने इतिहास में उदाहरण पढ़े हैं वो तो यही देखा है, जो अन्य देवताओं के भक्त होते हैं ज़्यादातर विष्णु से द्वेष करते हैं, या कभी ऐसा नहीं देखा होगा विष्णु उन पर आके कृपा करें। पर यहाँ देखिए, कृष्ण के भक्त हैं, शिवजी कृपा कर रहे हैं, इंद्र, वायु, वरुण सभी आकर अर्जुन पर कृपा करते हैं, उनको दिव्य असर देते हैं। इसी प्रकार ये जो कुछ गलत भावनाएं हैं लोगों के मन में, अगर भगवद्गीता को हम पढ़ें तो हमारे इस प्रकार के समस्त डाउट्स खत्म हो सकते हैं। अंत में, क्या मैं, मेरे मन में भौतिक इच्छाएं हों तो क्या मैं कृष्ण को अप्रोच कर सकता हूँ? कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है। हाँ, कर सकते हैं। श्रीमद्भागवतम में कहा गया, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी तीव्रेन भक्ति योगेना। मतलब क्या है? अकाम सर्व काम हुआ, आपके मन में कोई इच्छा ना हो, या सर्व काम आ, सब भौतिक इच्छाएं हो, जो भी हो, अगर मोक्ष की भी इच्छा हो तो किसकी शरण में जाएं? भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं और हिचकिचाएं ना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस विषय के ऊपर वर्णन करते हैं। अंत में भगवान बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति मेरी आराधना करता है तो वैकुंठ गमन होता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो उनके धाम पहुंचता है, कोई पितरों की पूजा करता है तो उनके धाम पहुंचता है, और कोई भूत प्रेत पिशाच की पूजा करता है तो अगले जन्म में भूत प्रेत बनता है। मतलब जिसकी आराधना करते हैं उसी की प्रकार की गति प्राप्त होती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर, गुह्यतम जो सब्जेक्ट मैटर है इस 9वें अध्याय का, भगवान और भक्त के बीच का प्रेममय संबंध। अब वो 26वें श्लोक से भगवान उसका उल्लेख करना शुरू करते हैं, जहाँ पे भक्ति योग का गुण क्या है उसका वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति बड़ी सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। मतलब क्या है? 26वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन मुझे प्रसन्न करना तो बहुत आसान है, पत्ते ले लो, पुष्प ले लो, फल, पानी, ये जो सब चीज़ भगवान ने ही हमें दी है, इसको भी लेकर अगर भगवान को सिर्फ भक्ति भाव से अर्पण करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं अपना लेता हूँ। इससे सरल और क्या हो सकता है? पर इस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। अर्जुन सोचते हैं, प्रभु मैं मानता हूँ हर कोई व्यक्ति इस प्रकार आपको भोग लगा सकता है, पर भक्ति भाव तो सबके मन में नहीं आ सकता, भक्ति भाव आने में तो थोड़ा समय लग सकता है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पास भक्ति भाव नहीं है तो कर्मयोग करिए। 27वें श्लोक में कहते हैं, यत करोषि यद असनासी यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्वसी तु कौन्तेया तत् कुरुष्व मद अर्पणम। अर्जुन जो भी आप करो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, जो भी खाओ मुझे भोग लगा के प्रसादम के रूप में ग्रहण करिए, जो भी तपस्या करो मेरे को प्रसन्न करने के लिए करो, जो भी कर्म करो मेरे प्रसन्नता के लिए, जो भी आप कर्म करके फल प्राप्त करो उसको मेरी सेवा में लगाओ, इतना तो कर सकते हो। ऐसा करोगे तो क्या फल मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण 28वें श्लोक में कहते हैं, शुभा अशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधना। अर्जुन जो इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है कर्मयोग का पालन करते हुए, दो चीज़ होती हैं, मोक्ष से कर्म बंधना, सभी कर्म बंधन या कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष ही प्राप्त होती है, और दूसरा उसके जीवन में सुख और शांति आती है। अर्जुन 2 मिनट सोचते हैं, प्रभु मुझे एक बात जमी नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने भक्तों के प्रति पार्शियल हैं? आप अपने भक्तों के हित के बारे में सोचते हैं, अब भक्तों का क्या, आप तो भगवान हैं, आपको तो एक समान होना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं, रुको भाई, किसने कहा मैं पार्शियल हूँ? 29वें श्लोक में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टु अस्ति ना प्रिया। अर्जुन मैं तो सभी जीवात्माओं के प्रति एक समान हूँ, ना हम मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी से किसी का प्रिय हूँ। बट आखिरी 2 लाइन महत्वपूर्ण है, ये भजंती तो माम भक्त्या, जो मेरी पूजा आराधना भक्ति से करता है, मैतेषु चापी हम, मैं उसके मन में विराजमान रहता हूँ, वो सदैव मेरे मन में विराजमान रहता है। महाभारत में बहुत खूबसूरत उदाहरण आता है, युद्ध समाप्त हो चुका है, सबका जो भी अंतिम संस्कार था सभी योद्धाओं का हो चुका है, युधिष्ठिर सभी पांडव हस्तिनापुर वापस पहुँच चुके हैं, युधिष्ठिर महाराज ने टेम्पररली राज्य अभिषेक भी करा लिया है भगवान को पसंद करने के लिए, और अब भीष्म पितामह से मिलने जाने की तैयारी चल रही है। तो अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के पैलेस में पहुँच जाते हैं, और जैसे ही पहुँचते हैं बड़े ही आश्चर्य में हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समाधि की पोज में बैठा हुआ देखते हैं, और युधिष्ठिर कृष्ण कृष्ण कहकर कृष्ण को बुला रहे हैं, कृष्ण का ध्यान टूट ही नहीं रहा। तो युधिष्ठिर वहाँ बैठ जाते हैं, कुछ घंटों के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी ध्यान मुद्रा से उठते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बड़ी विनम्रता से भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप मुझे इस लायक समझें कि मैं आपके इस रहस्य को जान सकूँ तो बताइए कि आप किस पे ध्यान लगा रहे थे। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप सब यहाँ आ चुके हैं, पर एक व्यक्ति अभी भी कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर पड़ा हुआ है, वो कौन है? युधिष्ठिर महा सोचते हैं, कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह, उन्होंने आज भी प्राण नहीं त्यागे हैं, और आज उस अवस्था में उनका मन मेरे में लीन है, वो दिन रात मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे नाम का गुणगान कर रहे हैं। तो उस समय भगवान बहुत खूबसूरत बात युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब भक्त का ध्यान मेरे में होता है तो मेरा ध्यान उस पर होता है। उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पे आया है, भगवान कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही कोई मेरा प्रिय है, बट जब कोई मेरी पूजा आराधना मुझसे प्रेम करता है, स्वाभाविक रूप से मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। इतना ही नहीं, अर्जुन जो मेरी भक्ति करता है, चाहे अगर भविष्य में जाकर उससे कोई गलती भी हो जाए, अगर वो दृढ़ता से मेरी भक्ति के नियमों का पालन करता रहता है, उसको महात्मा कहा जाता है। श्लोक संख्या 30। अपिचेसु दुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव समन्तव्या संयोग वैवसितो हिसा। अगर कोई गलती से कोई पाप कर्म कर जाता है तो उस व्यक्ति को फिर भी साधु कहा जाता है, अगर वो दृढ़ता से मेरी भक्ति करने में लगा हो। अर्जुन को ये बात गले के नीचे ही नहीं उतरती। अर्जुन बोलता है, प्रभु नहीं, मैं नहीं मान सकता। आप कैसे उस पापी को साधु कह सकते हैं जिसने कोई पाप कर्म करा हो? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्यों? क्योंकि भक्ति की इतनी शक्ति है, जो भक्ति का पालन करता है तुरंत उसके सारे पिछले जन्म जितने भी पाप कर्म है वो उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन क्षिप्रम भवती धर आत्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। अर्जुन जो भक्ति मार्ग का पालन करता है, बहुत जल्द दोबारा वह धर्मात्मा बन जाता है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु नहीं, मैं नहीं मान सकता। कृष्ण को क्रोध आ जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो मेरी बात नहीं मानते, तुम्हें लगता है जो भक्त है वो कोई साधारण व्यक्ति है? अगर वो भक्ति का पालन करे तो वो दोबारा धर्मात्मा नहीं बन सकता? मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी समय पूरे समाज के सामने डिक्लेयर करो। अर्जुन कहता है, प्रभु मुझसे क्यों डिक्लेयर करवा रहे हो, आप खुद ही करो। नहीं अर्जुन, तुम ही डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करो? कौमतेया प्रति जानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। जो मेरे भक्त हैं उनका कभी सर्वनाश नहीं होता। तो अर्जुन पूछता है, प्रभु आप मुझसे क्यों कह रहे हो अनाउंसमेंट करने के लिए, आप करो ना, आप कृपा करके। कृष्ण कहते हैं, बालक तेरे को पता नहीं है, युद्ध शुरू नहीं हुआ, तेरी रक्षा करने के लिए कितनी बार मुझे अपनी जो प्रतिज्ञा है तोड़नी पड़ेगी। मैंने प्रतिज्ञा क्या ली है, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तेरे संरक्षण के लिए कितनी बार तो मुझे सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए जो मैंने बोला है वो कर। क्या बोला है? मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ पर मैं अपने भक्तों के वचनों को कभी झूठा नहीं ठहरा सकता, इसलिए अर्जुन तुम बोलो। तो फिर अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? कौमतेया प्रति जानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। कृष्ण के भक्तों का कभी सर्वनाश नहीं होता। यहाँ तक कि फिर 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन यही नहीं, चाहे व्यक्ति ने कितने ही पाप कर्म क्यों ना करे, चाहे वो मलेच्छ यावना ऐसे बुरे वंश में उसका जन्म हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति भक्ति का नियमों का पालन करता है, जब व्यक्ति दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र नाम का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत जल्द वो धर्मात्मा बन जाता है। वो अंत में भगवान श्री कृष्ण इस 9वें अध्याय को समाप्त करते हुए कहते हैं, जो मेरा भक्त होता है वो क्या करता है? मन्मना भव मद भक्तो मदयाजि माम नमस्कुरु मामेव ससि युक्त्वैवम् आत्मनामत्परायणः। मन्मना भव मदभक्तो, अपने मन को मेरे में लगाता है, मेरी पूजा आराधना करता है। मन्मना भव मदभक्तो मदयाचि माम नमस्कुरु, मेरी आराधना मुझे नमस्कार करता है। इस प्रकार मेरा श्रवणम कीर्तनम करते हुए भक्त सदैव आनंद में रहता है, और इस प्रकार ऐसे भक्त का संरक्षण मैं सदैव करता हूँ, ऐसे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा को बताते हैं। क्या? भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, इनका नित्य संबंध है। भक्त का संबंध भगवान के संग भक्ति के द्वारा है, और वही श्री कृष्ण आज भगवद्गीता में दिखा रहे हैं कैसे अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर भगवान सारथी के रूप में अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो इसी के साथ हम 9वां अध्याय समाप्त करते हैं। अब कल से 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जहां अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया पर विस्तार से नहीं बताया। कृपा करके थोड़ा विस्तार से अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताएं। और फिर 11वें चैप्टर में बोलेंगे अर्जुन, प्रभु आपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताया है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया है, थोड़ा लाइव प्रेजेंटेशन हो जाए, थोड़ा यू नो एक टीवी शो, तो फिर विराट रूप का दर्शन होगा इस प्रकार से। सो 9वें अध्याय में सारांश में हमने देखा कैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन जो ज्ञान तुम्हें मैं देने वाला हूँ राज गुह्यम है, राज पवित्रम, इससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कोई नहीं है। वो ज्ञान क्या है? गुह्यतम ज्ञान, मेरे मेरे भक्तों का संबंध। तो इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले समझो मेरा भौतिक प्रकृति और जीवात्मा के संग क्या रिश्ता है। तो अर्जुन पूछते हैं प्रभु तो सब लोग आपके इस ज्ञान को क्यों नहीं अपनाते? अवजानंती माँ मूढ़ा, जो मूढ़ा जो मूर्ख होते हैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते अर्जुन, और जो समझते हैं वो महात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस सब्जेक्ट मैटर पर उल्लेख करते हुए जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं या विराट रूप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं उसका उल्लेख करते हुए अंत में भक्ति योग की क्या महिमा है उसका गुणगान करते हैं। इस प्रकार भगवद्गीता का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर 9वें अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।